आप मेरी तरफ हटे हुए नहीं होंगे, इसलिए आपसे डिसबिलिटी का विषय डिसबिलिटी के चंद नमाज में हम कटे द्वारे नमाज है साथ और इस जहन के साथ भी आपने इससे सवाल करना है, आपने क्वेश्चन करना है, आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और वो बच्चों को इसके अंदर पीछे रह जाएंगे, वो बच्चों के सवाल आपके लिए बात कर लूँगी जो कि उनको आइडेंटिफाई करेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा कि सर लेकिन हमारे इस टॉपिक के तीन महीने एक दो पाकिस्तान में दशहरे और तीन हमारे तीनों में अलग बात करेंगे, लेकिन जब तक पहले माइक ठीक है या माइक से बैठ किस दर्जे की है, लेकिन पहले भी देखना होगा कि नसीहती जंग होती क्या है, क्योंकि सर हमें गुजरना है। मैं आप उससे सवाल करता हूँ, दो मकूजे हैं, एक मकूजा ये है कि इंसान नाकाबले तबैयर है, उसके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती, बल्कि जो बाकियां बगैर जैसे होना है उसी बेस पर डालते हैं। एक दूसरा नजरिया ये है कि नहीं, इंसान के अंदर तब्दीली आ सकती है, चेंजेबल है, उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें आ सकती हैं, उसके अंदर बहुत सारी अगली चीजों को खत्म किया जा सकता है, ये दो आइडियालॉजी है। आपसे सवाल है पहली आइडियालॉजी ठीक है या दूसरी?
दूसरी।
क्यों मतलब? आप कहते हैं इंसान मुतरैया है, इंसान के ऊपर इंसान को तब्दील कर सकती है, इसका मतलब है कोई साइंस ऐसी है कि जिसको अगर हम जान लें तो हमें ये पता चल जाएगा कुछ अवामल हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो इंसान बदल सकता है, दुरुस्त है? इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ अवामल होंगे, कुछ माहौल होगा, कुछ पहलू होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो इंसान को बदल सकती हैं, और ये दुरुस्त है कि अगर इंसान नाकाबिल तबय्यर होता दुनिया में कोई नबी ना आता। नबी आना इस बात की दलील है कि इंसान काबिल तबय्यर है, इंसान के अंदर तब्दीली की गुंजाइश है और इंसान तब्दीली को महसूस करता है, उसे दिल पड़ता है। ये काम खैर की कुवतें भी करती हैं और ये काम बदी की कुवतें भी करती हैं, खैर की कुवतें भी इंसान को तबय्यर की तरफ ले जा रही होती हैं और बदी की कुवतें भी इंसान के अंदर तब्दीली पैदा कर रही होती हैं। हर एक तब्दीली का हदफ को समझे होकर अच्छा नसीहती जंग जो है, जंगों में हम अमूमन दो बड़ी कैटेगरीज करते हैं, एक हम तस्करी जंग करते हैं और एक हम नसीहती जंग करते हैं। हम सब सेक्शन में नहीं कर रहे हैं कि जो इसकी कैटेगरीज हैं जिसमें हम कहते हैं सकाफती जंग, फरहंगी जंग, फलानी जंग, फलानी जंग, नहीं, हम दो बड़ी कैटेगरीज में करते हैं, एक दूसरी जंग। किस चीज में खर्च ज्यादा होता है? अस्क्री जंग। अच्छा किस चीज में हरकत ज्यादा होती है? अस्क्री जंग। किस चीज में बड़ी सतह के कब्जे होते हैं? अस्क्री जंग। किस चीज में बड़ी सतह के नतीजे दिए जाते हैं? अस्क्री जंग। किस चीज में सरमाया ज्यादा सर होता है? अस्क्री जंग। अच्छा और इत्तेफाक से ही सारे जवाब अलग अलग, इसलिए कि चूंकि ये जंग हमें नजर आ रही होती है इसलिए इसके ऊपर असला भी हमें नजर आ रहा होता है, इसलिए इसके नतायज भी हमें नजर आ रहे होते हैं, इसलिए इसके असरा भी हमें नजर आ रहे होते हैं। चूंकि नजर आ रहे होते हैं हम मैयर इसको करते हैं, मापते इसको है, चूंकि माप इसको रहे होते हैं हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन जो दुनिया भर के अंदर वाक स्टडीज जिन्होंने पढ़ी है वो ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, सबसे ज्यादा जो मूल्य होती है, सबसे ज्यादा जो असर पजीर होती है, सबसे ज्यादा जो तरीर भी होती है और सबसे ज्यादा जो सरमाए है वो अस्कुरी जंग नहीं है बल्कि दूसरे जंग है। अच्छा कोई एक पहलू आप उस बयान करें ऐसा जो इस जंग को इस जंग पे डाल देती है, कोई एक पहलू हत्या नहीं होगी। ये कहा जाता है अस्कुरी जंग नाकाम हो जाती है अगर नजाती जंग साथ जीती न गई। अस्कुरी जंग फेल हो जाती है, फिजिकल पोजेशन फेल हो जाता है अगर आपने नजाती जंग जीती हुई नहीं। मैं आपसे सवाल यह है कि कोई एक चीज जिससे आप समझते हो ये इसकी सुपरियरिटी इसकी बरतरी नजाते हैं। ये कहां असर करती है अस्थिर जमा? अस्थिर जमा किसके ऊपर अफेक्ट करती है? ठीक है किसी की जाहिर नजर आने वाले बदन के ऊपर। ठीक है ये बदन को शहर कर देती है, बदन को तबाह कर देती है, बदन को डैमेज कर देती है, बदन को नुकसान पहुंचाती है। जाहिरी नजर आने वाला बदन चाहे वो बिल्डिंग हो खाओ इंसानी बदन हो खाओ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाहिरी बदन को नुकसान पहुंचाती है। कौन सी जान? अस्थिर जान। ठीक जाहिरी बदन अगर उसको कोई लाश बन जाए तो वो रिपेयर हो जाता है। जाहिरी बिल्डिंग से करके गिर जाए तो उनको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जाहिरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर तबाह हो जाए इसमें वो आया सुनामी जमाने आपने किसी ने देखा होगा एक साल पहले सुनामी से पहले का और सुनामी के बाद का और सुनामी के एक साल बाद असल ये जो उन्होंने कंपैरिजन किया मुख्तलिफ इंटरनेट चैनल्स तो वो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया सब कुछ तबाह हो गया इतना बड़ा सुनामी था लेकिन एक साल बाद में सारा कुछ उसको दोबारा काम करेगा। अच्छा ये क्यों ज्यादा मॉडल हो गई वो जंग जीतो जो जहनों को मुस्तर कर ले उस जंग में मुमकिन है आप जीत कर भी हार जाओ लेकिन इस जंग में आप जीत गए तो कभी हार नहीं सकते। अफगानिस्तान आपके सामने अफगानी नजाती जंग नहीं आ रहे क्यों इसमें जहन अफेक्ट होता है। अच्छा इंसान जो भी अमल अंजाम दे रहा होता है उसके पीछे कौन सी चीज होती है? जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसके पीछे क्या होता है? बस अगर इस जंग में कोई तसल्लत हासिल कर ले तो वो आपके अमल के ऊपर भी तसल्लत हासिल कर लेता है। उसे तबाह करने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि अब वो आपको प्रैक्टिकली अपने आप यूटिलाइज कर सकता है। उसके हाथ में इतना बड़ा हथियार आ जाता है वही इंसान जो कभी उसके मुकाबले में इस्तेमाल होता था आज वो उसके हाथ में इस्तेमाल होता है। नफसियाती जंग बड़ी अहम देखना है कि नफसियाती जंग जो है वो कहाँ काम करती है और इसकी हथियार क्या है। तीन नफसियाती जंग के अहम प्लेसेस हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा नफसियाती जंग का सबसे बड़ा पेपर इस जंग का सबसे बड़ा पेपर मुमकिन है कोई कहते हैं मुमकिन है कोई कहते हैं मुमकिन है कोई कहते हैं डिफरेंट पेपर है। इस जंग का सबसे बड़ा वेपन मुआयना है सबसे बड़ा वेपन गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा हम हर रोज उस हथियार का शिकार करते हैं। वो वेपन है टकराव और कितना टकराव वो अविस्मरणीय बात के झूठ इतना होगा कि वो सच लगे बाकी तकरार इतनी जबरदस्त चीज है कि जब बार 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 तकरार किया जाता है तो झूठ सच लगने लगता है और मीडिया उसके अंदर जैसे मेरे ब्रदर ने कहा एक रोल प्ले करता है। एक बंदा एआरआई बोलता है उसके ऊपर एक बात की जा रही है जियो बोलता है उसके ऊपर एक बात की जा रही है वो सीएनएन बोलता है उसके ऊपर एक बात की जा रही है शाम की सूरत हाल जियो भी नहीं बताना है एआरआई भी नहीं बताना है नहीं बता रहा है, यंगशन पोस्ट नहीं बता रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं बता रहा है, सीएनएन नहीं बता रही है, बीबीसी नहीं बता रही है, और दीगर जितने चैनल्स हैं, राइटर्स हैं, पुराने पुराने टाइप है, वो सारे के सारे यही बता रहे हैं। हम क्या पावर करेंगे? यही एक भेड़ का बच्चा खरीदा और दूसरे शख्स ने यह कसम उठाई कि मैं इसे भेड़ का बच्चा मुफ्त में ले लूंगा। बस जैसे ही भेड़ का बच्चा खरीद कर उस मसलन जगह से बाहर निकला, एक शख्स उसको मिला और उसने कहा कि देखो ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके आया, तो ये कुत्ते का बच्चा नहीं भेड़ का बच्चा है, पालने का ये नहीं करना। अगर देखो मेरी बात मान लो है ये कुत्ते का बच्चा नहीं देना ना, मैं उसे खरीदना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछ सकता है वो आगे चला। उसने ये पागल हो गई है, का बच्चा भेड़ का बच्चा होता है, तो कुत्ते का बच्चा नहीं होता। थोड़ा आगे चला, ये कहा चौक में आगे और मैंने लगता हूँ क्या जबरदस्त उसकी नजर का कुत्ता कहाँ से खरीदता है, कुछ और आगे गया है और चौक में पूछा, एक और आगे कहा वो मेरा हो सकता कहाँ से खरीदा, मैं तो ये नहीं कि यही जा रहा आप ले चुके जब उसने कहा शक इतना गहरा हो गया, उसने कहा अगर मैं घर में ले जाऊं और मेरे घर वाले के इंतजार में बैठे जो मैं पालने के लिए फिर का बच्चा लेके आ रहा वो अगर ये बाकी कुत्ते का बच्चा होगा तो वो बहुत तो नहीं छूट। ये क्या है? रेपिटेशन है। कभी आप सोचेंगे हर रोज हमें तकरार के जरिए से, तकरार के वेपन के जरिए जहन में आया जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा हकीकत क्या। इंशाल्लाह हमें अभी खुद करना है, जिस तरह हर वेपन होता है ना, मिसाइल एक वेपन है, मिसाइल शील्ड उसका एक दिफा है, इसी तरीके से गोली अगर एक वेपन है तो जैकेट जो है बुलेट प्रूफ जैकेट उसका एक दिफा है। इस जंग में अगर ये सबसे बड़ा वेपन है तो सबसे बड़ा दिफा भी हमारे पास मौजूद है और वो सबसे बड़ा दिफा इंशाल्लाह आखिर में आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि हम अपनी जिम्मेदारी की बात कर सकें। याद करना आपके जिम्मे है कि सबसे बड़ा दिफा क्या है? दुरुपद्रव
अल्लाह।
देखिए तीन जगह है जहां पर चीज काम करती है, एक अपने हैं, दूसरे गैर है और तीसरा गैर जानता। तीन तरह के हल्के होते हैं दुनिया में, या अपने होंगे फ्रेंड्स, या गैर एनिमीज, या गैर जानता ना बुलाएगा दोस्त। अच्छा, अपनों के ऊपर नफसियाती जंग क्या अटैक कर रही होती है? अपनों के ऊपर दो तरह के अटैक कर रही होती है दिमाग। अपनों में नुकाते कुवत पाए जाते हैं और कुछ मुकाते जोफ पाए जाते हैं। अपनों में कुछ पावर पॉइंट्स हैं और कुछ वीक पॉइंट्स हैं। गैरों में भी कुछ मुकाते कुवत पाए जा रहे होते हैं और कुछ मुकाते जोफ पाए जा रहे होते हैं। अपनों के ऊपर क्या करना है? उनकी जो पावर पॉइंट्स हैं, नशती जंग काम ये है कि वो उनके मुकाते कुवत को मुकाते कुवत रिटेन करने दे, रहने दे, उन मुकाते कुवत को कोई जोर को बदल न सके, उनकी पावर को कोई वीकनेस में कन्वर्ट न कर सके। अपनों का दूसरा काम यह है कि जो अपनों के वीक पॉइंट्स हैं, उन वीक पॉइंट्स को डेवलप करके उनको पावर पॉइंट्स बना दे, उनको मुकाते कुवत बना देना है। ये अपनों के ऊपर काम है। गैरों को समझ सकते हैं इनका काम क्या है कि जो गैरों के मुकाते कुवत है, जो उनके पावर बेसिस हैं, जो उनके पावर पॉइंट्स हैं, उनको क्या करना है? मुकाते ज़ोफ बना देना है, उनको वीक पॉइंट बना देना है, और जो उनके मुकाते ज़ोफ हैं उनको मुकाते ज़ोफ रिटेन करना है, उनको मुकाते ज़ोफ पे रिटेन करना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए।
गैर जानवर होने के ऊपर ये होता है कि उसके अंदर आपकी दुश्मनी इसको खत्म करना है और इसको अपने करीब करना है, क्योंकि ये गैर जानवर होगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, एक दो के अलावा कहीं नहीं खड़ा होगा। जो गैर जानवर है अगर वो इनके साथ खड़ा है तो वो आपके मुकाबले में है, और अगर वो आपके साथ नहीं खड़ा बल्कि वो कम से कम आपके हक में नहीं है, बस इसको इनके या मुकाबले में खड़ा करना है या कम से कम ऐसा करना है कि वो आपके खिलाफ खड़ा ना। गैर जानवर लोगों को या तो अपना हमलेवा बना लेना है या क्या करना है या उनको इस तरह करना है तो आपके मुकाबले में कभी खड़े ना हो सके। अजीज दोस्तों, दुनिया में तशय्यो और तशय्यो के मुकाबले में कुछ फर्क हैं, उनके नुक्ता कुव्वत आपसे पूछना चाहता हूँ और शिया तरीका कुव्वत भी आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर हम तशय्यो के मुकाबले में अमेरिका और इस्लामी कुव्वतों को फर्ज करें, उनका सबसे बड़ा पावर पॉइंट क्या है? तीन पावर पॉइंट आप उसको बताएंगे, उनके उनके मुकाबले कुव्वत बताएंगे जी।
इत्तेहाद,
उनकी हाँ यूनिटी है, यूनिटी ना कम से कंपैरेटिव है, जिसे नुक्ता कुव्वत है आज किस बनाम पर किस बढ़ती पर हमारे मुकाबले में खड़े होते हैं।
वेल्थ के बाद
जी
वेल्थ
पैर डॉलर एक पैर, ये हमें दुश्मन है और उनके पास एक है डॉलर
और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कंट्रोल है उनके पास,
इकोनॉमिक इसको मैं मेंशन कर सकते हैं ठीक है,
उनके अलायंस मीडिया
एजुकेशन एक मेंशन
एजुकेशन
मीडिया कंट्रोल
मीडिया तो
अलायंसेस बहुत है,
एजुकेशन अलायंसेस थोड़ा बड़ी पावर है उनके लिए, अलायंसेस के अलावा ठीक रिसर्च टेक्नोलॉजी जितनी चलानी हर चीज जितनी टेक्नोलॉजी पास ठीक है, टेक्नोलॉजी आपकी रहबरियत ने उनके मुकाबले में लड़ी है आजादी जान, आपकी लीडरशिप है, आपकी लीडरशिप ने उनके इन पावर पॉइंट के साथ क्या किया है, आई एम अफेक्टिव फिगर के साथ आपसे बात करूं, आपकी रहबरियत ने यह किया है, उनकी सबसे बड़ी चीज है जदीद टेक्नोलॉजी, वो समझते हैं हमारे पास जदीद न्यूक्लियर पावर है, वो समझते हैं हमारे पास जदीद न्यूक्लियर पावर है, वो समझते हैं हमारे पास जदीद तरीन मिसाइल है, वो समझते हैं कि हमारे पास हर लिहाज से ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर बहरिया से लेकर फतहिया से लेकर बर्दी पावर तक जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी के मैदान में हो सकती है उसमें वो क्या सकते हैं सुपीरियर है, दुरुस्त है, वो हमें आपको सुपीरियर समझते हैं नहीं समझते, दुरुस्त है। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो 2006 की हिजबुल्लाह लबनान वॉर थी, हिजबुल्लाह इसराइल वॉर याद है आपको, एटॉमिक वेपन किसके पास है? इसराइल के पास। मिसाइल टेक्नोलॉजी किसके पास है? बहरिया किसके पास है? फजाइया किसके पास है? इसराइल के पास। अच्छा जवाब, हिजबुल्लाह के पास बहरिया है?
नहीं।
फजाइया है? नहीं। अच्छा हिजबुल्लाह के पास न्यूक्लियर पावर है? स्पेस टेक्नोलॉजी है? नहीं। हिजबुल्लाह ने क्या किया? वो तमाम उनकी व्यक्ति और वो तमाम उनका ताकत के फसल टेक्नोलॉजी जिसकी बुनियाद पर वो हिजबुल्लाह के खिलाफ मैदान में आए, गिरकावट है सुना ना गिरकावट है, उनके जदीद तरीन मिसाइल है, उनके F-16 उनके B-52 गुंबद भी आए, ये सारे के सारे वहां पर तशय्यो के मुकाबले में जंग लड़ने के लिए आए, शिकस्त किसको हुई? इसराइल को। ये मैं कह रहा हूँ कि खुद इसराइल ने तस्लीम किया, इसराइल ने तस्लीम किया, वो जो गोल्ड में रिपोर्ट जारी हुई गोल्ड स्टोन रिपोर्ट में वादे तो यही कहा गया कि हम हिजबुल्लाह से हर मैदान में शिकस्त खाएंगे, उसके अंदर ही तस्लीम किया गया। अच्छा तो किसको लास्ट में टेक्नोलॉजी
नुकसान तो उनका भी ज्यादा
होगा, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी जीत सकी?
वो बस सब पीछे चला गया,
जितनी
इंफ्रास्ट्रक्चर था
दुरुस्त है। मैं सवाल करता हूँ, मैं
एक हदफ लेकर जंग में कूदा, अगर मैं वो हदफ हासिल न कर सकूं और मुझे इलाका छोड़ना पड़े, मैं कामयाब नहीं रहता। मैं एक हदफ डिक्लेयर किया कि इसराइल अपने दो फौजियों को जिनको हिजबुल्लाह ने गिरफ्तार करा है वापस ले जाए। दूसरा हदफ डिक्लेयर किया कि हिजबुल्लाह को बिल्कुल रूट आउट कर देना है। तीसरा हदफ ये बताया कि हमने लबनान के अंदर से शिया कंट्रोल खत्म कर देना है। दुरुस्त है, ये तीन हदफ डिक्लेयर किया। उसके मुताबिक उन्होंने जंग लड़ी। 33 दिन के बाद क्या हुआ, इलाका किसको छोड़ना पड़ा, इसराइल। मिलिट्री की बुनियाद पर लॉस किसके ज्यादा हुआ, इसराइल। वो जो आज तक अनटेजिबल था इसराइल, और प्रैक्टिकली जितने टारगेट्स जान किए थे वो तमाम टारगेट्स अचीव न कर सके। ये बस ये दाग किसके हिस्से में आया, इसराइल के हिस्से। ये पूरी दुनिया ने देखा। इसी तरीके से मसलन मैं टेक्नोलॉजी की एक और बात करूं, जब आपको पता है ना ये 444 दिन इन्होंने ये नमाज पढ़ाए रखे थे अमेरिकन स्वर्थान के रूप में जासूस, या इंकलाब के बाद। तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की, और प्लानिंग के अंदर दो जदीद तैयार है, उनके अंदर बहुत ज्यादा अफराद असलाह वेपन और जदीद तरीन कमांडो भेजा, और वो आए यहाँ पर लड़ने के लिए। लेकिन हुआ ये कि उनकी वो टेक्नोलॉजी किसी पार्क का शिकार हुई, दोनों जहाज आपस में टकराए, तबाह हो गया सारा सीना के अंदर। इमाम भाई के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे, उन्होंने उसके ऊपर कदम रखा, पूरी दुनिया में उसकी तस्वीर दिखाई। उस वक्त अमेरिका ने यह कहा कि ये टेक्निकल एरर की वजह से जहाज तबाह हुआ। इमाम भाई ने कहा कि अगर ये टेक्निकल एरर की वजह से तबाह हुआ, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी भी है, तुम्हारे पास फसला भी है, तुम्हारे पास जहाज भी और हैं, और तुम्हारे पास अफराद भी और हैं, कमांडर भी और हैं, एक मरतबा ही दोबारा देखें। लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं, किस कुछ कष्ट हुई टेक्नोलॉजी में। मैं इसके आता हूँ, हम टेक्नोलॉजी कंपटीशन के मुखालिफ नहीं, उस पर बात करें। टेक्नोलॉजी का कष्ट आ गया, अगर टेक्नोलॉजी ही फतेहमंद होती तो इराक से अमेरिकन कभी भी ना आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अमेरिकन से भी गए। टेक्नोलॉजी में शिकस्त होती, और आज ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे बड़ी पावर है और इसराइल सबसे बड़ा सप्लायर है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हमारे जदीद तरीन ड्रोन है, ये इस वक्त एक्टिव है, जो स्पाई ड्रोन से कहते हैं, जो जासूस के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कौन सा कंट्री है जिसने उस जासूस ड्रोन को हैक करके अपने कंट्री के अंदर उतरने को मजबूर किया। अच्छा, हैक करने के लिए पूरी दुनिया ये जानती है मौजूदा टेक्नोलॉजी से सुपीरियर टेक्नोलॉजी तक का जो करंट टेक्नोलॉजी है, जब तक उससे बड़ी टेक्नोलॉजी आपके पास ना हो उसको हैक नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में आपने उनको बीट कर दिया, उनकी जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी स्पेरिटी को आपने ड्रोन से ही कर दिया, आपने उसको हैक कर दिया। दुरुस्त है, मीडिया CNN किसके हाथ में, उनके हाथ में। तमाम दुनिया का मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर किसके हाथ में, उनके हाथ में। अच्छा, आज पाकिस्तान में बीबीसी को छोड़े जियो ने अगर अमेरिका की कोई खबर लेनी हो, या मसलन अफ्रीका की कोई खबर लेनी हो, या मसलन यरूशलम की कोई खबर लेनी हो, किस से लेती है, जियो न्यूज के नुमाइंदे हैं वहां नहीं, कहां से लेती है, न्यूज एजेंसी से लेंगे, CNN से लेंगे, बीबीसी से। चरबा है, टोटली चरबा है उनकी कब्जे में। दोस्त है, अब तो मीडिया किनके हाथ में है, उनके हाथ। मीडिया के जरिए जैसे आज जैसे ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शाम के हालात को किसी और तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। 2006 की जंग, अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त का बुश, वो तकरीब कर रहा है, यूनाइटेड नेशन का दरबार है, यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद है, इसकी वीडियो पूरी दुनिया में मौजूद है। वो तकरीर करते हुए ये कहता है कि दरअसल, उसके अल्फाज का तर्जुमा आपको सुनाता हूं, कि दरअसल ये जंग हिजबुल्ला हार रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हिजबुल्ला का मीडिया नेटवर्क बहुत मजबूत है, और वो पूरी दुनिया में अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए ये पावर चला रहे हैं कि हिजबुल्ला ये जंग जीत रही है, जबकि दरअसल हिजबुल्ला ये जंग हार चुकी है। कौन कह रहा है, किसके सामने कह रहे हैं, पूरी दुनिया के मीडिया के हेड्स के सामने, किस जगह पर है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। मुझे बताएं یہ اعتراف فتح ہے یا اعتراف شکست ہے؟ پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں اس گلا یہ جنگ جیت رہی ہے تو کون جیتا میڈیا کی بات اس گلا جیتا آپ کے سارے ٹولس کے ہوتے ہوئے اس گلا پوری دنیا کو باور کرانے کے اس کا مطلب یہ جنگ اس گلا جیتی یہ ہے میڈیا پھر آپ نے دولت کو ملی چیز آج بیسٹ ایک سسٹم رکھتا ہے اس سسٹم کو انہوں نے کیا نام دیا ہوتا ہے اگر اکنامک سسٹم کی بات کریں کیا نام دیتے ہیں کیپٹلزم جو ہے اسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام اس وقت جس ڈکے کا شکار ہے اور اس تباہی کا شکار ہے اس کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ اب ہوئے بات چیت میں جس کی دنیا تقریباً 70 کنٹریز کے 800 کے قریب شہروں کے اندر سوری 80 شہروں کے اندر 80 میجر سٹیز کے اندر اور صرف امریکہ کے 800 سٹیز کے اندر اس کے اوپر پروٹیسٹ جاری ہے امریکہ میں تقریباً 125 بینک ان دو تین سالوں کے اندر ڈیفالٹ کر چکے ہیں کمپنی جو ڈیفالٹ کی ہوئی شمار نہیں کرنٹ اگر اسٹیٹسٹک آپ پڑھیں تو یورپ اس وقت اس کیفیت میں شاید وہ یورپی یونین کو برقرار رکھ سکے بیل آؤٹ سکیمز کے ذریعے وہ پہنچ کر جیسے ڈرپ نہیں لگاتے ایک انسان بہت کمزور ہونے تو ڈرپ لگاتے ہیں نا ڈرپ کے سہارے جیسے زندہ ہے اس وقت ان کی معیشت ڈرپس کے سہارے ٹھیک اچھا میں اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو پتا ہے اگر آپ کی نیٹ کے ذریعے کریں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو اکنامک سسٹم فلورش کر رہا ہے وہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہے اور دنیا میں اس ریسیشن کے دور میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً 26% گروتھ جو ہے وہ ایران کے بینکنگ سسٹم کے اندر بھی اس ریسیشن کے دور میں پوری دنیا کے اندر اوور آل اسلامک بینکنگ سسٹم میں گروتھ کیا ہے جبکہ پوری دنیا کے بینکس کیا کر رہے ہیں ڈیفالٹ کر رہے ہیں مینج نہیں کر پا رہے ہیں یہ بے رقم اچھا یہ وہ کیفیت ہے کہ جب ویسٹ جس کو اپنی پاور شمار کرتا تھا آج اس کی گلی کوچوں کے اندر آپ کو وال اسٹریٹ یہ پرچم بات کیے ہوئے ہے کہ وی آر 99% اور 1% وہ ہے جن کے ہاتھوں میں دولت ہے وی ول فائٹ ٹل یہ 99% دولت ہم 99% لوگوں کے پاس میں یہ نعرہ ہے آپ کو وال اسٹریٹ موومنٹ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ کو وال اسٹریٹ موومنٹ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو کچھ چل رہی ہے تو کون سا اکنامک سسٹم دیکھے کا شکار ہے جی ریئلٹی ویسٹ اس وقت شدید دیکھے کا شکار ہے اکنامک سسٹم کے اس پاس بس ہم اگر آئے آپ کی رہبریت نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ان کے پاور پوائنٹس کو ان کے مدد زوف میں بدل دیا ہے آج وہ پوری دنیا کے اندر اپنے اکنامک سسٹم کو اپنی پاور پوائنٹ کے طور پر ڈکلیئر نہیں کر سکتے آج وہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کو اپنے پاور پوائنٹ کے طور پر ڈکلیئر نہیں کر سکتے آج دنیا کے پاس چھوٹے چھوٹے کنٹری ان کی ٹیکنالوجی کے مدد مقابل کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی ہی اس کے لیے پاور ہوتی یہ کبھی مصر کا جو ہے اس کی مبارک نہ کرنے دیتے یہ کبھی تیبرس کا بیانی نہ کرنے دیتے یہ کبھی زہر آبادی یمن کا جو ہے اس کو نہ جانے دیتے یہ ٹیکنالوجی ان کی شکست آ گئی ہے انسانی جذبے کے مقابلے میں انسانی کمٹمنٹ کے مقابلے میں یہ آپ کی رہبریت ہے جس نے اس کے پاور پوائنٹس کو پوری دنیا کے اندر ثابت کر دیا کہ یہ پاور پوائنٹ میں اس وقت تمہارے ویک پوائنٹ بن چکے ہیں آپ کی رہبریت نے ان کے پاور پوائنٹس کو ویک پوائنٹس بنا دیا اور دوسری طرف کیا ہے اس وقت اس پہ ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ آپ کی رہبریت نے پوری دنیا میں کون سے پاور پوائنٹس میں ٹکڑے کر دی ہم پاکستان کی سبزی کی طرف کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایران کے بعد سب سے زیادہ مقتبہ اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم پڑے جی مقتبہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ایران کے بعد سب سے زیادہ تعداد اس وقت پاکستان جو ہے وہ عالمی نفسیاتی جنگ میں سب سے زیادہ تشدد اس کا نشانہ بن رہی ہے جب انقلاب اسلامی آیا پوری دنیا میں ایک شیعہ شناسی کا مرکز تھا اور آج تقریباً 30-35 سال کے بعد دنیا میں تقریباً 50 کے لگ بھگ میں ہیں وہ شیعہ شناسی کے مراکز ہیں جو پوری دنیا میں سرمایہ داری اس بات کو کر رہے ہیں کہ کیسے تشیع کو اپنے ڈائیورٹ کرنا ہے کیسے تشیع کو ایک اختلاف کا شکار کرنا ہے، کیسے تشریح کو علمائے تقسیم وجود میں لانی ہے، کیسے تشریح کو اختلافات کا شکار کرنا ہے اور ان کی پاور کو خود جوڑنا ہے. یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے اور انفن پڑھنے چونکہ نفسیاتی جنگ نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں بھی چونکہ یہ جنگ نظر نہیں آ رہی اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں نہیں ہمارے خلاف کوئی جنگ مسلط نہیں ہے، جب بلکہ ہمیں پتہ چلے گا بدترین جنگ کا شکار ہیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم اپنے تین پاور پوائنٹس کے لیے ہمارے پاکستان کے اندر ملت تشریح کے تین پاور پوائنٹس کی بتائیں. پاور پوائنٹ ابھی ویکنیس کی طرف جانا کیا ہو سکتے ہیں، پاور
پوائنٹ نظام ولایت
ایک نظام ولایت، یعنی نظام ولایت دراصل کیا ہے، دراصل یہ سینٹرلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکزیت ہے. دوست دوسرا جی عزاداری سے ہی شبہ تین دنیا میں کم ایسی ملتیں جن کے پاس کوئی ایسا سینٹرلائز سسٹم ہو کہ ایک کمانڈر کنٹرول ہو، اور اگر ایک ریگولیٹ بات کرے تو پوری دنیا کے اندر اس کی اجازت ہے. ایسا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہیں ہے. اگر سے پاکستان کی بھی اگر بات کریں، ہم چونکہ اس وقت پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے جو پروسیشنز ہوتے ہیں، جو ان کے جلوس ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جیسے نہیں ہے جس پر سرمایہ داری عزاداری کے برابر ہوئی یا جس کے اندر پبلک گیدرنگ عزاداری سے جلوس ہوتا ہے. بھی ایسا پولیٹیکل سب سے بڑی پاور آپ کی عزاداری ہے، سب سے زیادہ فائنانس بھی اس کے اوپر آپ سرو کرتے ہیں عزاداری کے اوپر. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اپنی پبلک گیدرنگ کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ آپ کی پاور پوائنٹ ہے، نظام کے ساتھ آپ کی پاور پوائنٹ ہے، انتظار یعنی محدودیت آپ کا پاور پوائنٹ ہے. اس کو اگر پھر آپ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے آئیڈیالوجی، اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں مرجعیت، کیونکہ مرجعیت اس طرح شکل میں موجود ہے، ہمارے وہاں بھی اختلافات کے دن بھی آئے اور ہر علاقے میں اس کی بنیاد پر اختلافات کا ایک چیپٹر کھل جائے. درست ہے یا نہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں کہ وہی انتظار اور محدودیت جسے ہماری پاور کا مرکز ہونا چاہیے تھا، آج اسی انتظار اور محدودیت کے ایسے ایسے نظریے پاکستان کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں جو آپ کو اس کی انتظار سے دور کرتے ہیں. یہ ہے کیا نہیں، یعنی امام زمانہ کا انتظار جس کے نتیجے میں ایک ایسا مومنٹ بنتا ہے کہ جو معاشرے کو بدلنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، اس کی بجائے ایک ایسا مومنٹ کہ جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انتظار کا قائل ہو، اس کا آئیڈیالوجی نظریہ کیا ہے. آج جو مرجعیت ہمارے درمیان حکومت ہونی چاہیے، اس مرجعیت کی بنیاد پہ بعض لوگوں کے اتنے اختلافات پیدا کرتی ہیں، یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نیچری ہے، یہ کمی ہے، یہ فلانا ہے، یہ تقسیم نہیں ہے. ٹھیک، تو عزیز دوستو کیا یہ قدرتی ہے یا یہ کسی نفسیاتی جنگ کی وجہ سے، یہ قدرتی یہ نفسیاتی جنگ کی وجہ سے ہے. اور اس وقت ہم اس نفسیاتی جنگ میں ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے کہا تھا ہم لوگ کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے، نبات قوت کو ریٹین کرنا ہے. اگر یہ ہمارے نبات قوت ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، ہمیں ریٹین کرنا ہے. اور وہ جو ہمارے مقدس ذوق ہیں بعض لوگوں پر، ان مقدس ذوق کو ہم نے کیا کرنا ہے، مقدس ذوق ہے مثلاً ہم پر کرنا ہے ایک ایسی گندر جو 4.5 کروڑ پاکستان کی سرزمین پر آباد ہو، اگر وہ پراپگندہ ہو تو وہ سفر اتنی بھی سفر ملا لیں وہ سفر ہی رہتی ہے، سفر سے اوپر اس کے اندر کوئی برق نہیں آتی، لیکن اگر وہ متحد ہو تو وہ بہت بڑی گروپ بنے. بس اگر یہ ہماری مقدس ذوق ہے تو اس مقدس ذوق کو ہمیں نکلے ایک دن کے اندر
अगर पाकिस्तान के अंदर जस्ट इमेजिन पूरी दुनिया के अंदर ये रेशो किसी जगह पर नहीं पाई जाती, ये रेशो यानी तकरीबन 85-90% के राउंड है, ये प्लस है कि 90% आपकी टोटल आबादी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, 90% आपकी टोटल आबादी का आपके लिए हुक्म पर मैदान में आता है। यानी तशय्यो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम रखती है कि वो अपनी टोटल आबादी का 90% को मोबालिज कर सकती है। और आप अपनी फिगर देखेंगे पाकिस्तान में मैक्सिमम जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है वो पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल सिस्टम में 10-15% से ज्यादा लोगों को पूरे पाकिस्तान से कभी दे नहीं सकी और एक दिन की मोबिलाइजेशन 5% भी नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूँ आपको, सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर इज्तिमा पॉलिटिकल पार्टी में किसका हो, जो आपने देखा हो सबसे बड़ा इज्तिमा जी इमाम चल कितनी तादाद होगी उसकी,
4-5 लाख।
कितनी आबादी आपकी, 19 करोड़ का 5 लाख कोई हिस्सा बनता है, फॉरेंस में बनेगा दोस्त है। आप कहते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को मैदान में लाया है वो भी इशारियों में लोगों को ला सकता है, ये तशरीह है जो 90% से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कर रही है। इस्लाम के अंदर तशरीह के अंदर बहुत जानदार कहना यह है हम अपनी बहादुर को यकीनी बनाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो बन सकते हैं, ये मैनेजेबल है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा वो मिलत तशरीफ ले गए, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। अभी तक हम फ्रोज मिली अपना डिफा नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, एक हकीकत में डाल दिया गया लेकिन हम ये कर सकते हैं। मैं आसान दूर करने के लिए पाकिस्तान में जब हम तशय की बात करते हैं इस तरफ पाकिस्तान में तशय को तीन बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे पहले हम अपने मुताबिक कुत में से जो जुगराफियाई तौर पर हमारे मुताबिक कुत कौन से पाकिस्तान में जुगराफियाई तौर पर तशय के मुताबिक कुत कौन से पाकिस्तान और दुरुस्त है। इस नुकता को नुकता में बदलने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के रस्ते को नाम किया गया है, ये जो पाराचार के रस्ते को नाम किया गया है, ये वहां जो दाखिली मसाइल छेड़े गए हैं, ये वहां जो जंग छेड़ी गई है, इस जंग के जरिए असल हदफ किसको बीक करना है, वो गिलगित बल्तिस्तान जो पूरे पाकिस्तान के शियों की कुव्वत का इजहार करता है, वो पाराचार जो पूरे पाकिस्तान के शियों की ताकत का इजहार है, उस पाराचार को अपने ही इलाके की एक ऐसी जंग में उलझा दिया जाए कि वो लोग कहें कि यार हम कराची की बात क्यों करते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात क्यों करते हैं, गिलगित वाले कहें हम जंग की बात क्यों करते हैं, डेरा इस्माइल खान की बात क्यों करते हैं, हमसे तो अपना रास्ता नहीं खुलता, वो इस जगह पर आ जाए। ये क्या किया जा रहा है, ये तशरीह के खिलाफ नफसियाती जंग का हिस्सा जिसने हमारे पावर पॉइंट्स को कमजोर पॉइंट्स के अंदर बदलाया। बस एक काम इस वक्त पाकिस्तान में तशरीह के खिलाफ ये हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान पाराचरा और इसके अलावा डीएल खान है और इंडियन सिंध है जो हमारे पावर पॉइंट है शिया आबादी के लिहाज से, उनको वीक करके दाखिल मसाइल वहां पर खड़े करके उन इलाकों को हमारे लिए कुव्वत का मरकज बनने की बजाय उन इलाकों को हमारे लिए मसाइल स्थान बनने की कोशिश की जाएगी। ये एक काम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सभी, अगर हमें पता ये चल जाए कि हमारे खिलाफ काम किया हुआ है तो हम उसका नजारा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम ये हो रहा है, पाकिस्तान में शियों की कोई मुश्तरक आवाज नहीं बननी चाहिए, ये दूसरा काम हुआ, पाकिस्तान में शियों की कोई मुश्तरक आवाज नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्तरक आवाज नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्तरक पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्तरक ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए, हत्ता कोई अलायंस नहीं बनना चाहिए जिसके नतीजे में मुख्तलिफ पार्टियां मिलकर एक जगह पर बैठ जा सके। आप जरा फर्ज करें कि इसी गिलगित बल्तिस्तान के सामने पर मजलिस के अलावा पूरे पाकिस्तान के जितने शिया पार्टियां और ग्रुप हैं वो सारे मिलकर एक शिया इत्तेहाद तश्कील देते, उसकी कुव्वत क्या होती और इसकी कुव्वत क्या होती, अंदाजा लगा सकते कितना बड़ा, कई बराबर पहले ही दिन हुकूमत पाकिस्तान के घुटने टेकने पड़ जाते, पहले ही दिन कितनी बड़ी लागत है, इतनी बड़ी लागत है। बस उसका नाम क्या किया है, मुश्तर का आवाज वो पैदा। तो तीसरा हमें किया जा रहा है डीमोनेटाइज, डीमोनेटाइज मतलब
वास्तविक इलाकों के अंदर टारगेट के लिए भी जाते
हैं। इसका असर मतलब क्या है? बंदे खत्म करना नहीं है, ये जो खुदाना होकर बैठे हुए या लेबर मारे जा रहे हैं या जहरीन मारे जा रहे हैं, इससे क्या शिया खत्म हो सकते हैं? नहीं। क्या असर है? ये सियासी जंग है। आप डिमोरलाइज हो जाए, आप हंगामा में जंग असम इरादे से जीती जाती है। बस जब आप डिमोरलाइज हो जाए, जब आप हौसला छोड़ बैठे, जब आप ये सोच बैठे कि यार हम नहीं सर्वाइव कर सकते, जब हमने जीत ली, हमारे ऊपर की कोशिश की जाती है, क्या हमें हम में हिम्मत और ताकत है कि नहीं हम इसको बदल सकते? बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। इसके लिए इस वक्त हमारे मूड नहीं है, ये वक्त नहीं है। मैं ये अर्ज करूँ, ये सारी चीजें चेंजेबल है। हम इन तमाम मुकाबलेवत को मुकाबलों को मुकाबलेवत में बदल सकते हैं और मुकाबलेवत जो बयान किए हैं उनको रिटेन कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर सबसे मुअसर तरीन रोल जो शेख आरिफ हुसैन हुसैनी का ख्वाब था वो प्ले कर सकते हैं, जो रहबर का ख्वाब है और जो इमाम हुमैनी का ख्वाब था हम वो कर सकते हैं। पाकिस्तान में ना कोई ऐसा आलिम बने, ना कोई ऐसी कर्मसाजी हो, ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जिसके अंदर मिलत तशरीफ शरीफ ना हो। हम इस पोजिशन को रिटेन कर सकते हैं और इंशाल्लाह में करना है, मतलब जाना है। आप आइए
जी। नुकता शुरू हो गया पाकिस्तान में, कुछ लोग कहते हैं कि आधे शिया तशद्द में अलीगन वलीउल्लाह पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ते। दिस इज वेरी पहले तीन बताए उनमें से एक लेडी, इसलिए मैंने इसको कोई बात नहीं हैंडल हो सकता है। ये इसकी मेन रीजन क्या है? कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये मामला खड़ा किया है कि आप ये जी अलीगन वलीउल्लाह का काम शुरू करें जो कुछ लोग नहीं पढ़ते उसको पढ़ाएं?
हर मसला होता है। अगर आपने प्रातः सवाल किया तभी मुझे इसका पूरे जवाब देना है। देखिए, आपने किसी जंग में मुकाबला करना है दुश्मन का, क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए? दुश्मन का असला पता होना चाहिए कि असला कौन सा है। दुश्मन की तादाद पता होनी चाहिए, उसकी लोकेशन
कहाँ से करता
है पता होनी चाहिए, उसकी हिम्मत पता होनी चाहिए, उसके अहंकार पता होनी चाहिए, उसके राह आए दूर पेनिट्रेशन बेसिस पता होनी चाहिए। दोस्त आम जन की बात कर रहे हैं, आम जन में अगर आपने दुश्मन का मुकाबला करना है उसका असला पता होना चाहिए। जन का असर सबसे ज्यादा नेटवर्किंग इसकी की जाती है, दुश्मन की हकीकी तादाद मालूम की जाए, असला मालूम किया जाए, बैटल किसके साथ है, तादाद क्या है, लोकेशन कहाँ है, हिम्मत एमपी क्या है, उनके साथ हमकार लोग कौन से हैं और वो किस रस्ते से दाखिल हो सकते हैं। दोस्त है नफसियाती जंग में भी यही चीज है, नफसियाती जंग का भी असला है। हमें जानना होगा कि यह असला कौन सा है, दुश्मन कौन सा असला से है। मैं सिर्फ इशारा कर कहता हूँ हमारे यहाँ एनजीओ एक असला है, मीडिया एक असला है, नाम निहाल बस नाम निहाल मुकदमे इनने जागरीन की और वहां उसको दिया जाने ये एक है। इसी में एक डिवीजन उस डिवीजन को भी खोलने का मौका नहीं, वो तमाम के जो जहनों के ऊपर मशहूर हर वो जो जहनों के ऊपर मशहूर थे, खा वो लिखी हुई चीज हो, खा बोली हुई चीज हो, खा वो कैरियर क्रिएट की जो जहन के ऊपर मशहूर होती है। तो हम यह देखते हैं कि नफसियाती जंग का कोई असला भी है, हम यह देखते हैं नफसियाती जंग का कोई तादाद है। बताया कि 50 जो मरकज हैं, एक एक मरकज के पास इतना समय है जितना एक मुल्क को चलाने के लिए होता है और वो सिर्फ इस टारगेट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है कि तशय्युद जो है उसको डिसइंटीग्रेट किया जाए, उसको तकसीम किया जाए। इनकी लोकेशन हिकमत हिकमत अभी के जरिए हम इस काम को करना चाहते हैं, ये जान लें हम बड़ी आसानी से उस हिकमत अभी का तदारक कर सकते हैं। और इस तरीके से ये बात जी आप सुन सकते हैं।
नफसियाती जंग का मसला ये था, मतलब ये कि बगैर हथियार के आप उस पर इतना प्रेशर डालें कि उनकी जो एक डर पैदा करें या कुछ असर फॉर्म पैदा करें, ये